हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबको भूख लगी होगी, फिर भी हम सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था नवद्वीप में, जब वो निवास कर रहे थे तो सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, कहाँ गए थे? गया गए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ यात्रा में। तो ये यात्राओं में जाना ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु आदि हैं, वो फ्रिक्वेंटली यात्राओं में निकलते थे। चैतन्य महाप्रभु स्टूडेंट थे तभी वो बांग्लादेश की यात्रा में चले गए थे, उसके बाद वो गया की यात्रा गए, तो गया की यात्रा ने उनके जीवन को क्या किया? चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया, परिवर्तन लाया, चेंज लाया। पहले तो वो निमाई पंडित के रूप में पूरे नवद्वीप में सबके सामने अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान के रूप में स्थापित करते थे। हर कोई व्यक्ति नवद्वीप में उनसे डरता था, इवन उनके जो फेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड वगैरह हैं या उसी एज के जो अलग अलग युवा लोग हैं, निमाई पंडित आ रहा है मतलब डर यहाँ पैदा होता था। गदाधर पंडित, मुकुंदा आदि, हाँ ये सब लोग जब वहां से निमाई पंडित अपने दो तीन स्टूडेंट्स के साथ, और वो अकेले नहीं चलते थे निमाई पंडित, उनके साथ हमेशा तीन चार का ग्रुप होता था या सात आठ दस पंद्रह स्टूडेंट्स होते थे और हाथ में ग्रंथ लेते थे। इसको कहते हैं कृष्ण जब विद्या का विलास मतलब विद्या का आस्वादन करने के लिए आते हैं तो वो निमाई पंडित का रोल अदा करते हैं नवद्वीप में। और वहां क्या करते हैं, वो हर एक को हराते हैं, हर एक व्यक्ति को जो डिवोटी स्टूडेंट्स थे उनको पकड़ पकड़ कर उनके साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद करेंगे और उनको अपने नॉलेज के द्वारा पराभूत करेंगे या परास्त करेंगे और अपने विद्वत्ता को स्थापित करेंगे। तो सारे जो नवद्वीप में जो डिवोटीज थे वो सोचते थे ये युवक यदि भक्त बनेगा ना तो मैं इसका संग कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव इसके संग में बना रहना चाहता हूं, क्योंकि ये विद्वान तो है लेकिन उसमें एक चीज ऐड होनी चाहिए, क्या? डिवोशन। भक्त बने तो फिर मैं इसके संग से कभी दूर नहीं रहूंगा, सारे नवद्वीप के भक्त यही सोचते थे। फिर ये निमाई पंडित एक बार अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं, तो जब वो गया गए तो वहां उन्होंने वहां के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वहां क्योंकि गया में भगवान के एक चरण कमल है, विष्णुपदी कहा जाता है या एकपदी कहते हैं गया को भी, तो भगवान के एक चरण कमल है, जिस चरण कमल का गुणगान वहां के जो ब्राह्मण थे जोर शोर से कर रहे थे, अरे यही वो चरण कमल है जिनसे गंगा का उदय हुआ था, यही वो चरण कमल है जिनसे लक्ष्मी निवास सेवा करती है, यही चरण कमल है। हाँ, ऐसे चरण कमल की पूरा एक लेंथी चैप्टर चैतन्य भागवत में दिया है। तो महाप्रभु ने जब चरण कमलों की महिमा को सुना तो रो पड़े, अरे उन्होंने सोचा कि भगवान के चरण कमल इतने अद्भुत है, उनकी सेवा के बिना मैं कैसे जीवन यापन कर रहा हूं। तो ऐसे उस समय फिर वो रो पड़े, जैसे रोए भगवान के चरण कमलों को देखकर, और उठे तो क्या हुआ, उन्होंने देखा उनके पीछे ईश्वरपुरी खड़े हैं। कौन खड़े हैं? ईश्वरपुरी, उनके आध्यात्मिक गुरु। तो ईश्वरपुरी को जैसे देखा उन्होंने कहा प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार। क्या कहा प्रभु ने? प्रभु कहे, बोलिए प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार। कहते हैं कि अरे जय देखिल चरण तोमार, क्यों मेरी गया यात्रा सफल हुई? क्योंकि आप जैसे केशव ईश्वरपुरी जैसे महान वैष्णव के चरण कमल मुझे दर्शन हुए हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को अप्रोच करते हैं, कहते गया में आकर पिंड दान देना, तर्पण आदि करना, ये इससे अधिक लाभ यदि किसी वैष्णव को देखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, हजारों हजार हमारे जो पूर्वज है उनका उद्धार हो जाता है। तो कहते गया आदि तीर्थों में भ्रमण करने से सर्वोच्च क्या है, किसी वैष्णव का दर्शन करना और उनकी सेवा करना। तो महाप्रभु उनको अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण रस का आस्वादन कराओ, कृष्ण भक्ति का। तो ईश्वरपुरी उनको दीक्षा देते हैं और ईश्वरपुरी उनसे वो हरि नाम स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जब चैतन्य निमाय पंडित आते वापस नवद्वीप में, उसके बाद उनमें पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया था। उनको अभक्तों का संग, जो भक्त नहीं है उनका संग अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा सोचते थे, योजना बनाते थे, कैसे मैं डिवोटीज का एसोसिएशन करूं, कैसे उनके संग में रहूं। तो जब भक्त लोगों ने देखा, अरे ये निमाय पंडित यात्रा में जाने से पहले थोड़ा अलग था, यात्रा में आने के बाद पूर्ण रूप से चेंज हो गया है। क्या परिवर्तन आ गया है, केवल कृष्ण के अलावा अपनी जिह्वा से कुछ और बोलता ही नहीं है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे निमाय पंडित तो हमेशा कृष्ण कथा का वर्णन करेंगे, और अपने घर में भी होंगे तो केवल कृष्ण कृष्ण कहते रहेंगे। तो इस प्रकार से निमाय पंडित में पूर्ण रूप से परिवर्तन आया था चैतन्य महाप्रभु में। और फिर जब वो नवद्वीप में रहे तो उन्होंने सोचा, एक बार चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और बैठे थे तो क्या उच्चारण कर रहे थे, गोपी गोपी गोपी, बोलिए
गोपी गोपी गोपी।
अभी एक स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े थे, उनको पड़ुया कहते हैं। तो ये निमाय पंडित गोपी 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 का उच्चारण कर रहे हैं, बल्कि कलयुग धर्म क्या है, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
उस स्टूडेंट्स ने सोचा ये कैसा है, कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, तो गोपी गोपी कह रहा है। तो वो मजाक करने लगा उनके साथ। तो फिर इनको, ये तो एक्चुअली वृंदावन की भाव में थे, है ना, वैष्णव के गोपियों का स्मरण कर रहे थे, उनके नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो इतना गुस्सा आ गया तो एक डंडा उठाया निमाय पंडित ने और उन स्टूडेंट, वो जो स्टूडेंट था उसके पीछे दौड़े मारने के लिए। वो अपना जीवन बचाते हुए कि अभी मर जाऊंगा, भागते भागते पहुंचा। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे नवद्वीप में, उनके पास गया कि देखो वो निमाई जब से वो नवद्वीप वहां यात्रा से वापस आया है तब से कुछ अलग ही हरकत कर रहा है। मैंने उसको बोला कृष्ण कृष्ण कहो, वो गोपी गोपी कह रहा था। तो सारे स्टूडेंट ने कहा, निमाई अपने आप को समझता क्या है, अगली बार वो ऐसा करेगा तो हम उसको सब मिलके क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, मारेंगे। तो भगवान, तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु वो जान गए। उन्होंने सोचा, क्योंकि कृष्ण है, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं तो सारे जगत को कृष्ण प्रेम देने के लिए आया हूं, लेकिन ये कई सारे जो मुझसे यदि ईर्ष्या करेंगे, मुझसे यदि द्वेष करेंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यही सोच के, उन स्टूडेंट्स की इस बर्ताव को सोच के चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, यदि मैंने उनको कृष्ण प्रेम देना है, कृष्ण भक्ति देनी है, तो मुझे क्या करना होगा, संन्यास ग्रहण करना होगा। क्योंकि सन्यासी को हर कोई व्यक्ति, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, वो उसको रिस्पेक्ट देता है, उसके सामने प्रणाम करता है, उसका आदर आदि करता है। तो केवल निमाय महाप्रभु ने सोचा, वो मुझे प्रणाम करे जीव, या फिर मेरा थोड़ा सा सम्मान आदर आदि करे, तो उनका उद्धार निश्चित है। तो ये सोच के उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तब से उन्होंने फिर निश्चय कर लिया, कि फाइनल कर लिया टारगेट, कि अभी जो फाल्गुन पूर्णिमा आएगी उस समय मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तो पूरे नवद्वीप में ये बात फैल गई। चैतन्य महाप्रभु ने निमाय ने अपने 5 भक्तों को कहा जाकर पर्सनली कि मुझे संन्यास ग्रहण, मैं संन्यास लेने वाला हूँ। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ, उन्होंने कहा मैं शिखा और सूत्र, जो जनेऊ होता है, इन 2 चीजों का त्याग करने वाला हूँ। इसका अर्थ होता है कि क्या करने वाला हूँ, संन्यास लेने वाला हूँ। तो जैसे नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, श्रीनिवास, इन भक्तों ने जैसे सुना तो बिल्कुल मूर्छित हो गए, और उन्होंने अपनी माता को भी कहा। तो सची माता के एक ही पुत्र थे, और अभी अभी निमाय पंडित का विवाह विष्णु प्रिया से हुआ था। तो विष्णु प्रिया अभी अभी तो कुछ 6 महीने बीते थे विवाह होकर, सारे नवद्वीप में चर्चा हो रही थी कि निमाय पंडित संन्यास ग्रहण करने वाला है। तो विष्णु प्रिया दिन रात रोती रहती थी, और जो सची माता है नवद्वीप में वो कैसी थी, एक स्टैचू के भांति, एक मूर्ति के समान घर में बैठी रहती थी और केवल आंखों से आंसू बहते रहते थे। तो जिस दिन, दूसरे दिन घर से वो भागने वाले थे अर्ली मॉर्निंग संन्यास लेने के लिए, उस रात्रि में सारे भक्त, उस दिन किसी को पता नहीं कि कल जाने वाला हूं मैं संन्यास लेने, तो सारे नवदीप के भक्त इतना प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से कि सुबह उठते ही उनका दर्शन देखने के लिए आते थे उनको हर कोई, और देखते थे उनके साथ स्नान करने के लिए जाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आते थे, तुलसी की सेवा करते थे, विष्णु की सेवा आदि करते थे। तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में, सची माता के घर में सारे नवदीप के वासी अलग अलग गिफ्ट्स, अलग अलग गार्लैंड्स आदि लेकर आए, उनको गिफ्ट देते रहे। और फिर जब संध्या लेट नाइट हुआ तो उस समय एक डिवोटी पहुंचा, वो थे कोलावेचर श्रीधर। कौन थे? कोलावेचर श्रीधर एक ऐसे भक्त थे जिनके पास अपनी संपत्ति कहने के लिए कुछ और नहीं था। एक छोटा सा घर था, घास की कुटिया थी, उसमें बहुत सारे छेद थे, बारिश आ जाए तो सारा पानी अंदर आता था, और घर में एक भी बर्तन नहीं था, एक इतना लोहे का पात्र था बस, वही उनकी प्रॉपर्टी थी। और एक ही धोती थी जिसमें 17 छेद थे। कितने थे?
17
छेद, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। लेकिन इतना होकर भी वो गंगा की सेवा करते थे, और दूसरा निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कोलावेचर श्रीधर को भी आखिरी में लेट नाइट वो आए, उन्हें सोचा मैं भी कुछ भेंट देना चाहता हूँ, क्या लाए हो आपने घर में? घर के ऊपर झोपड़े के ऊपर जो कद्दू होता है ना, कद्दू की वेली जाती है, तो कद्दू आता है बड़ा सा सब्जी के लिए, तो कद्दू लेके पहुंचे वहां। तो महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु के पास पहुंचे, और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ये अमूल्य भेंट है, और उन्होंने उनको दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपनी माता और विष्णु प्रिया को कहा कि आप क्या करो, इसको दूध के साथ बनाओ, स्वीट बनाओ। तो आखिरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने कुछ खाए थे नवदीप में, तो कद्दू विथ मिल्क स्वीट खाया था, और वो निकल पड़े थे। तो फिर जब उस रात्र खाई और महाप्रभु सो गए, तो विष्णु प्रिया को तो हृदय बिल्कुल ही हो रहा था, बर्न हो रहा था, वो गई महाप्रभु के चरणों को पकड़ा, उनको मसाज करने लगी, फिर हाथ को पकड़ा और अपने सर में रखा, कहा बताइए मैंने सुना है जो सच है कि आप सन्यास ग्रहण करने वाले हैं। महाप्रभु कहते नहीं, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते, मैं सन्यास विन्यास कुछ नहीं लेने वाला, आपको छोड़कर कैसे मैं जा सकता हूँ। तो महाप्रभु ने बड़ी मीठी मीठी बातें की, और चैतन्य महाप्रभु सो गए, लेकिन विष्णु प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। मध्य रात्रि हुई, विष्णु प्रिया फिर से उठती है और निमाय पंडित महाप्रभु को कहती है, फिर से उनका हाथ लेकर, सच सच बताइए क्या आप सन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो उनका भी बताना पड़ा। उन्होंने कहा तुम भूल गए विष्णु प्रिया, तुम तो मेरे साथ यहाँ एक विशेष लीला का संपादन करने के लिए आई हो। और कहा फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहां बेड पर ही लंबा प्रवचन दे दिया, आत्मा के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया, फिर भौतिक संबंधों के बारे में बताया, कहा कि ये सारे संबंध अशाश्वत है, ये बॉडी टेम्पररी है कुछ साल के लिए, तो बहुत लंबा वर्णन किया महाप्रभु ने। फिर कहा कि हे विष्णु प्रिया, इस जगत में दो ही चीजें सत्य हैं, या दो ही चीजें आश्रय लेने योग्य हैं, या शेल्टर लेने योग्य हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी? तो महाप्रभु ने कहा एक तो है कृष्ण का नाम, और दूसरा है कृष्ण के भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सचिव उन्होंने विष्णु प्रिया को कहा कि आप बस अपने जीवन में इन दो चीजों का शेल्टर लो, शुद्ध भक्तों का आश्रय और कृष्ण नाम का आश्रय। तो फिर दूसरे दिन सुबह जब अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, मैं भी ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे मंगल आरती उठते हैं, चैतन्य महाप्रभु उठ जाते हैं, और सची माता तो उनको तो नींद आती नहीं है, वो तो दरवाजे में बैठी हुई थी ऐसी मुद्रा में। महाप्रभु अर्ली मॉर्निंग उठे और निकल पड़े, देखा अपनी माता खड़ी है दरवाजे में, उसको गए प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा आदि की, और कुछ नहीं बोलते हुए घर से बाहर निकले। विष्णु प्रिया यहाँ क्रंदन कर रही है और घर से बाहर निकले है तो उन्होंने पहले अपने चार भक्तों को बोला था कि आप भी मेरे साथ चलोगे और क्या करोगे, मेरे संन्यास सेरेमनी का अरेंजमेंट करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर नदी में जंप लगाते हैं, तैर के क्रॉस करते गंगा नदी को और उस ओर जाकर दौड़ने लगते हैं। अभी आप ट्रेन से जाते हो तो 1.5 घंटा लगता है नवद्वीप से आपको कटवा जाने के लिए। कटवा एक स्थान जहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, वहां केशव भारती थे मायावादी सन्यासी जिनसे चैतन्य महा उनका आश्रम था वहां गंगा के किनारे। तो चैतन्य महाप्रभु गए दौड़ते हुए गए और उन्होंने कहा कि उनके पास जाकर केशव भारती को कहा कि आप मुझे सन्यास प्रदान कीजिए। उन्होंने सोचा जैसे महाप्रभु को देखा उनको उनके परिवार का स्मरण हो आया, महाप्रभु के परिवार का, सोचा ये तो नव युवक है, इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है, इसके बाल तो सुवर्ण कर गोल्डन बाल है, इसके गोल्डन वर्ण है, हाँ तो इसको सन्यास दूंगा तो ये सारे लोग जो आसपास के मेरे आश्रम को जला देंगे, ये नए युवक को सन्यास दिया जिसका अभी अभी मैरिज हुआ था। तो फिर वो डर गया, उसने कहा देखो मैं ऐसे सन्यास नहीं दे सकता, आपको परमिशन लेना होगा अपनी माँ से, लेटर लिख के लाओ, जैसे इस्कॉन में अभी भी रूल है सन्यास लेना है तो आपको अपनी पत्नी का लेटर चाहिए, यदि पत्नी लेटर नहीं देती तो जेबीसी आपको सन्यास लेना अलाउड नहीं करते। तो महाप्रभु को कहा कि जाओ अपनी माता का रिकमेंडेशन लेटर लाओ। तो महाप्रभु ने जैसे सुना वो फिर से दौड़ने लगे कहा नवदीप की ओर। केशव भारती ने सोचा तो पागल हो गए, सन्यास लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, कहा आओ आओ इधर आओ। फिर बुलाया चैतन्य महाप्रभु को, फिर जो तैयारियां होती हैं गंगा स्नान करना या फिर हम फिर शेविंग आदि करना, तो सुबह के समय में महाप्रभु स्नान करने गए तो जब पता चला कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने वाले निमाए तो कई दूर दूर के गांवों से हजारों लोग आ गए, हजारों हजारों लोग वहां देखने के लिए। और महाप्रभु ने स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज भी आप जाते कटवा वो स्थान, वहां ये सारी लीला स्थलियां हैं, तो वहां निमाय पंडित बैठ गए और मधु नाम का जो बार्बर था नाई वो भी अपना वस्तुरा लेकर बैठा महाप्रभु को शेविंग के लिए। लेकिन जैसे हाथ लगाता था तुरंत हाथ कांपने लगता था और रो पड़ता था, वो सोचता था इतने सुंदर बालों को मैं कैसे काटू, सुबह से बेचारा बैठा है शाम हो गई फिर भी शेविंग नहीं हो रहा था। फिर महाप्रभु ने उनको बोला तो मधु ने फाइनली उनका हेड शेव किया और उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ली, आज के बाद ये बार्बर का धंधा मैं क्या करूंगा त्याग दूंगा, परमानेंटली क्लोज्ड। हाँ फिर वो कुछ और करने लगे। फिर केशव भारती ने उनको सन्यास प्रदान किया और सन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक दिन वहां रहे। तो जो कटवा था सची माता उसको कहते थे कंटक नगर, क्या कहते थे कंटक मतलब कांटे जैसा चुपने वाला स्थान है, मेरे बेटे ने सन्यास ले लिया, हाँ ये स्थान मेरे लिए आनंददायी नहीं है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर आते हैं शांतिपुर, नित्यानंद प्रभु के साथ वो बहुत सारी लीलाएं हैं। फिर सची माता की आज्ञा से, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी कहा था, सची माता ने कहा कि आप कहाँ रहो, जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी के लिए वो निकलते हैं। तो निकलते समय शांतिपुर में हर कोई रोने लगता है, इवन हरिदास ठाकुर की आयु 70 से अधिक होगी, महाप्रभु 24 साल के थे, हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य जोर जोर से रो रो के महाप्रभु के पीछे। हरिदास ठाकुर कहते हैं आप यदि नवदीप को छोड़ के जाओगे तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन आश्रय देगा। तो महाप्रभु ने कहा जब ये लोग पहली बार, मैं जब जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा तो जो आने वाली पहली रथ यात्रा है उसमें सारे नवदीप के भक्त आओ और उनके संग में तुम आओ और मेरे साथ ही रहो, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा था। फिर महाप्रभु आते हैं, तो आते हुए चैतन्य महाप्रभु बंगाल से चलते हुए आते हैं, एक छत्रवट और फिर वहां आते हैं बालेश्वर आते, रेमुना खीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, फिर वहां से कटक आते हैं और कटक के बाद चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर आते हैं। भुवनेश्वर आकर लिंगराज महादेव का दर्शन करते हैं, अनंत वासुदेव का प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं, शिव अष्टकम का उच्चारण करते हैं, 4-5 दिन वहां लिंगराज में रहते हैं चैतन्य महाप्रभु। बहुत सारी चीजें करने के बाद महाप्रभु इसी रोड से जहां से हम बस से आए रात्रि को, यहां से चलते हुए आए और चलते हुए आकर इस स्थान में आए, इसका नाम पहले कमलापुर था, अभी चंदनपुर है। आप यहाँ कहोगे किसी को दंड भंगा जाना है, किसी को पता नहीं दंड भंगा क्या चीज है, ना ऑटो वालों को ना लोकल लोगों को, सबको पता है कि ये स्थान क्या है, चंदनपुर है। तो महाप्रभु जब आए तो यहाँ जहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस किया उसके उस तरफ एक स्थान है कपोतेश्वर महादेव। मैं काफी साल पहले गया था वहाँ कपोतेश्वर महादेव, जहाँ पांडव भी आए थे, भगवान राम भी आए थे, और वहाँ शिवजी और पार्वती कपोत के रूप में थे, कबूतर के रूप में उन्होंने यहाँ तपस्या आदि किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि हे नित्यानंद, ये लो डंडा मेरा ना, तुम पकड़ के रखो, मैं अभी कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करके आ रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में जब डंडा आया, वो डंडे को देख रहे थे गुस्से से। हाँ, वो इसलिए गुस्से से देख रहे थे, हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे मेरे जो प्रभु है, हाँ, स्वयं भगवान कृष्ण है, और वो उनके हाथ में तुम घूमते रहते हो, हाँ, सारा जगत उनकी सेवा कर रहा है लेकिन वो तुम्हें उठा के घूमते रहते हैं। तो बहुत गुस्सा आ गया उनको, और वैसे भी उन्होंने सोचा कि जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो ये जो वर्ण और आश्रम के जो ये विधि विधान है या चिन्ह है, उनको धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इस गुस्से में आकर दंडे को तोड़ दिया, और तोड़ के यहाँ ये जो नदी है भार्गी नदी, इसमें उन्होंने फेंक दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके आए, कहा है नित्यानंदा, मेरा दंडा कहाँ है? कहते देखो, आप हमेशा एक्सटेसी में रहते हो, नाचते रहते हो, गाते रहते हो, भावावेश में रहते हो, तुम नाच रहे थे, गा रहे थे, तो तुम मेरे ऊपर गिरे और मैं दंडे के ऊपर गिरा और दंडे के क्या हो गए, तीन टुकड़े हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, कहते तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो, तुम मैं संन्यास लिया तभी मुझे वृंदावन जाना था, तो तुम इधर लेके आए मुझे बंगाल शांतिपुर लेके पहुंचाया तुमने। तो बहुत उनके साथ वो हो गई बातचीत हुई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच में। और फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ से ही फिर दौड़ते हुए निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। ऐसा कहते हैं कि ये कुछ किलोमीटर का अंतर है, महाप्रभु को बहुत लंबा महसूस हुआ, मतलब इतना भावावेश में मग्न थे कि एक एक कदम उठाने के लिए उनको कई समय लगता था, कृष्ण प्रेम में इतने उन्मत्त थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे निकल जाते और जगन्नाथ का दर्शन करते, कल हमने डिस्कस भी किया था ये चीज। तो आचार्यगण कहते कि क्यों ये जो दंडा है, हाँ, उन्होंने यहाँ तोड़ा था या तीन भागों में तोड़ा था। तो शास्त्र कहते हैं कि चार प्रकार, चार धरातल होते हैं सन्यास के ना, बहुदक, कुटीचक, हंस और परमहंस। तो किसी को सन्यास लेना है तो पहले व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मीन्स, हाँ, पहले बहुदक मतलब अपने गाँव में भिक्षा मांगना शुरू करो, या नहीं, नहीं पहले क्या करो, कुटीचक, पहले बाहर गांव के बाहर कुटिया बनाओ, वहां रहो परिवार से अलग अकेले, फिर थोड़ा आपको प्रसाद भेजते रहेंगे परिवार वाले, और फिर उनसे भी अपना नाता खत्म कर दो। फिर क्या करो, बहु उदक, उदक मीन्स अलग अलग लोगों से मांगो, बहु मीन्स अनेक लोगों से, किसी एक के घर में बार बार सन्यासी को खाना अच्छा नहीं है, उसको हमेशा अलग अलग स्थानों में ग्रहण करना चाहिए। तो वो होता है दूसरा स्टेज है बहुदक, और तीसरा है हंस, हंस, और चौथा है परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य जो हमेशा भ्रमण करते रहता है, हंस इन दोनों से परे है। तो शास्त्र कहते जो हंस और परम हंस है उसको दंडा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इन विधि विधानों से मुक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु को यह दंड धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसी कारण से नित्यानंद प्रभु उस जो उनका जो दंडा था उसको तोड़ते। महाप्रभु ने कहा मैं तो सन्यासी था, सन्यासी हूँ, और सन्यासी के पास अपना कोई संपत्ति नहीं है, उसके पास दो ही संपत्ति है, एक डंडा और दूसरा कमंडलो, पानी के लिए। तो कहते जो एक संपत्ति था वो भी तुमने मेरा तोड़ के फेंक दिया, अभी मैं पूर्ण रूप से भिखारी हो गया हूँ। और वैसे इसलिए भी तोड़ा नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी जो सन्यासी है, मायावाद जो संप्रदाय है, वहां से सन्यास ग्रहण किया था। और मायावादी सन्यासी केवल एक दंडा देते, जो सन्यासी होते हैं उनके अंदर कितने दंडे होते हैं, तीन होते हैं, बांस के डंडे होते हैं, हाँ। तो एक्चुअली उस डंडे में 33 करोड़ सारे जो देवता हैं वो उस सन्यासी के दंड में निवास करते हैं और वो लेके घूमता है। तो नित्यानंद प्रभु ने यह भी सोचा कि ये भगवान होकर सारे देवी देवताओं को कैरी करते रहते हैं, वो कुरियर सर्विस थोड़ी है, घुमाते रहो सबको देवताओं को यहाँ से वहां। तो उनसे वो मुक्त करने के लिए भी उन्होंने तोड़ा। और सन्यास जो मायावाद सन्यास है वो एक दंडा देते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यास में तीन दंडे हैं, शरीर मन और वाणी। पूर्ण रूप से जो सन्यासी है कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, उनका प्रचार आदि कार्य में। किस प्रकार से ऐसे कई रीजन बताए गए हैं। महानदी महाराज एक और भी रीजन बताते हैं कि ये जो भार्गी नदी है ये साक्षात यमुना है, और यमुना में साक्षात कौन निवास करते हैं, सदैव जल क्रीड़ा करते हैं, कृष्ण जो त्रिभंग ललित फॉर्म में है। तो तीन टुकड़े इसलिए भी किए है कि कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में है, वो जाकर क्या करेंगे, उसमें जल क्रीड़ा करेंगे। तो अलग अलग वैष्णवास अलग अलग अपना जो रियलाइजेशन है वो शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि दंड भंगा लीला परम गंभीर, ये दंड भंगा की लीला बहुत गंभीर है, बहुत रहस्यमयी है। ये उसी व्यक्ति को समझ में आ सकती है जिस व्यक्ति का प्रेम इन दोनों के प्रति है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इसलिए ये बहुत विशेष स्थान है और वैसे बहुत रमणीक है। कभी भी जगन्नाथपुरी में टाइम स्पेंड करना है, मोर चांटिंग और हियरिंग कथा कीर्तन नाइस प्रसाद स्विमिंग, तो बेस्ट प्लेस कौन सा है, दंड भंगा। हम डिवोटीज आते हैं अलग अलग ग्रुप्स, तो हम मैक्सिमम समय दिन पूरा इधर ही बिताते हैं। यहाँ जो प्रसाद डिवोटी सर्व करते वो अमेजिंग है, और यहाँ आपको स्नान करना है तो बहुत अमेजिंग वाटर है। तो वहां भी भगवान राम आए थे, वो भी इस्कॉन का लैंड ही है, टेम्पल्स का लैंड है, इनका ही लैंड है। उधर भी सारा खेती है, उस तरफ एक टेम्पल है भगवान राम का, जब भगवान राम विजिट किए थे जब सीता देवी के साथ वनवास में थे। और भृगु मुनि यहाँ निवास करते थे। इस मंदिर के पीछे और एक गार्डन है जिसमें भृगु मुनि सीताराम लक्ष्मण का सेवा करते थे, तो वो आश्रम भी है। तो उस ऐसे कहा जाता है लोकल लोग, यहाँ किसी को बुखार होता है तो उस राम मंदिर के जाकर तीन बार परिक्रमा या चार बार करने से आपका बुखार तुरंत उतर जाता है। तो हम जब भी भक्त आते तो जाते वहाँ माया का बुखार उतारने के लिए। सबको माया का बुखार चढ़ा हुआ है, कौन नाप सकता है, गुरु ही नाप सकते हैं। तो बुखार उतारने के लिए क्या चाहिए हमें,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
दंड मंगल लीला के चैतन्य देव के
यहाँ पे पंचतत्व।